हरे कृष्णा श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद अध्याय 10 श्लोक संख्या 17, 18, 19, 20, 21 आगे तक पढ़ने का प्रयास करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्था न निरोधलीलया गृहीतशक्ति त्रितयाय देहिना अंतर्भवाय नुपलक्ष्यवर्त्मने। नमो नमस्ते स्वर्षभाय सात्वता विदूरकाष्ठा यमोहुकुयोगिना निरस्तसाम्या तिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणिनोऽस्य ते नमः। यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यत्वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सत्यो विधुनोति कर्मशम् तस्मै सुभद्र शवसे नमो नमः। किरातहूणा ध्रपुलिन्दपुलकषा आभीरशुम्भा यवनाकसादया येनी स्वपापा यदपाश्रयाश्रया शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। प्रचोदिताये न पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतिं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रा दुरभूत्किलास्यत समेऋषीणां ऋषभप्रसीदत। भूतैर्महद्भिर्य इमां पुरो विभो निर्माय शीते यदमूषु पुरुष भुङ्क्ते गुणांशो दशषोडशात्मक सोलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय विधसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्यं जन्मुखाम्बुरुहासवं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताक्षं नमामि भक्त शक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की। श्री ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। दूसरा स्कंद अध्याय 10 श्लोक संख्या 17 से आज हम स्टार्ट करेंगे। तो इन श्लोकों में शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये बता रहे हैं कि जीव के पास जो कुछ भी इंद्रियां हैं, अगर जैसे हमने कल पढ़ा था कि इंद्रियां कैसे उसको प्राप्त होती हैं, जैसे वो इच्छा करता है उस तरह से उसको शरीर मिलता है। मतलब जैसे भगवान के महाविष्णु के अंदर ही वो स्थित हो जाते हैं सारे प्रलय के समय, और फिर पुनः जब उनकी सृष्टि करनी होती है तो उनके कर्मों के अनुसार उनकी इच्छाओं के अनुसार उनको शरीर प्राप्त हो जाता है। और उस शरीर के अंदर जो इंद्रियां हैं वो किस तरह से उनको प्राप्त होती हैं, उसका बहुत ही सुंदर विवरण यहाँ पर दिया गया है। हमारे पास जो कुछ भी है उसका कारण ये है कि हम भगवान के अंश हैं, और हमारे पास वही है जो भगवान के पास है। तो ये शरीर ये इंद्रियां वो हमें किस तरह से प्राप्त होती हैं, उसके विषय में यहाँ पर हमें बहुत ही सुंदर सुखदेव गोस्वामी बताएंगे। हम सब इसको समझने का प्रयास करेंगे। श्लोक नंबर 17 कृपया मेरे साथ साथ पढ़ने का प्रयास कीजिए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, प्राणेन क्षिपता क्षुत्रेण अंतरा जायते विभो पिपासतो जक्षतश्च प्राण मुखं निरपित्यत। प्राणेन क्षिपता क्षुत्रेण अंतरा जायते विभो पिपासतो जक्षतश्च प्राण मुखं निरभित्यत। प्राणेन क्षिपता क्षुत्र प्राणेन क्षिपता क्षुत्रेण अंतरा जायते विभो पिपासतो जक्षतश्च प्राण मुखं निरभित्यते। प्राणेन क्षिपता क्षुत्र, प्राणेन मतलब जीवन शक्ति से, आक्षिपता यानी विचलित होकर, क्षुत यानी भूख, त्रिड यानी प्यास, क्षुत्रिड यानी प्यास और भूख, अंतरा यानी अंदर से जायते उत्पन्न हुई, विभो यानी परमेश्वर की, पिपासितो यानी प्यास बुझाने की इच्छुक, जक्षता अर्थात खाने की इच्छुक, च तथा प्राण मुखम निरभिद्यते। प्राग मना पहले, मुखम यानी मुंह, निरभिद्यते यानी प्रकट हुआ। तो हमारा मुख कैसे प्रकट हुआ उसके विषय में बता रहे हैं कि विराट पुरुष द्वारा विचलित किए जाने पर जीवनी शक्ति यानी प्राण ने भूख तथा प्यास को उत्पन्न किया, और जब विराट पुरुष ने पीने तथा खाने की इच्छा की तो मुंह खुल गया। मतलब ये जो हमारा खाने और पीने की इच्छा, जीव के ये जीव की प्रथम इच्छा होती है कि कुछ खाया जाए है ना और कुछ पिया जाए, तो ये कैसे उत्पन्न हुई है? ये जब विराट पुरुष को खाने पीने की इच्छा होती है तो जीव के अंदर भी ये इच्छा उत्पन्न होती है। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, जिस प्रकार से माता के गर्भ में जीवों के अंगों तथा ऐन्द्रिक अनुभूतियों का विकास होता है, उसी प्रकार से समस्त जीवों से समिष्ट रूप विराट पुरुष का भी विकास होता है और विकास होता प्रतीत होता है। अतः समस्त सृजन कार्य का परम कारण निर्गुण या निश्चेष्ट नहीं है। यहाँ पर समझाना ये चाह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि जो समस्त सृजन कार्य का परम कारण है, क्यों उसके अंदर यदि कोई वो अगर निर्गुण है, वो यदि कोई इच्छा नहीं करता तो फिर उसकी सृष्टि कैसे करती है। तो ये इसे ये समझना चाहिए, जैसे बताया कि उसके अंदर इंद्रियां हैं तभी जीवों के अंदर, उसके अंदर इच्छा है खाने पीने की तभी जीवों के अंदर, तो वो निष्कृष्ट कैसे हो सकता है, वो निश्चेष्ट कैसे हो सकता है, वो निर्गुण नहीं हो सकता। भगवान में भी समस्त प्रकार की क्रम इंद्रियां तथा ज्ञान इंद्रियों की अनुभूतियां रहती हैं और इस तरह वे प्रत्येक व्यक्ति में घटित होती हैं। यानी ये सारी इंद्रियां भगवान के अंदर होती हैं, इसीलिए जीवों के अंदर भी आती हैं। अतः अलग अलग जीव आत्माओं में मुख होता है। इसी प्रकार से अन्य सारी इंद्रियां तथा उनके अंग भी होते हैं। यहाँ पर मुख समस्त इंद्रियों का प्रतीक स्वरूप है, क्योंकि अन्यों पर भी यही नियम लागू होता है। अभी सबसे पहले मुख का उदाहरण दिया है क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि भगवान में भी समस्त प्रकार के कर्मेंद्रियां तथा ज्ञान इंद्रियों की अनुभूतियां रहती हैं और इस तरह वे प्रत्येक व्यक्ति में घटित होती हैं। मतलब भगवान के अंदर भी कार्य करने, भगवान सुनते हैं, हम बोलेंगे भगवान से प्रार्थना तो भगवान सुनते हैं, जब हम भगवान के साथ वार्तालाप करेंगे तो भगवान रिस्पॉन्स देंगे हमारी बात को, बात कोई हमसे बात करेंगे, जब हम भगवान की ओर देखेंगे तो वो भी हमारी ओर दृष्टिपात करेंगे, जब हम भगवान के विषय में सोचेंगे तो भगवान भी हमारे विषय में सोचेंगे। इट मीन्स भगवान के अंदर वो सारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां होती हैं। भगवान निश्चेष्ट नहीं होते, भगवान पत्थर नहीं है, भगवान के अंदर भी वो सब भावनाएं हैं। तभी तो हम भगवान के अंश हैं, तभी तो हमारे अंदर वो सब भावनाएं हैं। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी जैसे बता रहे हैं कि भगवान में भी समस्त प्रकार की कर्मेंद्रियां तथा ज्ञान इंद्रियों की अनुभूतियां रहती हैं और इस तरह वे प्रत्येक व्यक्ति में घटित होती हैं। या इच्छा या चेष्टा परम पुरुष का स्वभाव है, भगवान का स्वभाव है इच्छा करना, और इसीलिए हमारा स्वभाव है इच्छा करना क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। चूंकि वे समस्त सुखों की समिष्टि है, अतः अलग अलग जीव आत्माओं में मुख होता है। अब वो भगवान जो है समस्त सुखों के आधार है, सारे सुखों के भोक्ता है, अब उनका मुख ही नहीं है तो वो कैसे सेवन करेंगे, कैसे प्रसाद का भोग खाएं, तो उनके पास भी टेस्ट लेने की इच्छा है, चेष्टा है, तभी सबके पास वो है। अतः अलग अलग जीवात्माओं में भी मुख होता है। इस प्रकार से अन्य सारी इंद्रियों तथा अनेक अंग भी, उनके अंग भी होते हैं। यहाँ पर मुख समस्त इंद्रियों के इंद्रियों का प्रतीक है। मतलब मुख जो है उससे सबसे पहले उसी से ही जीव जो है वो टेस्ट करना सीखता है। छोटा बच्चा होता है उसको बाकी इंद्रियों के सेंस का ज्यादा इतना अनुभव नहीं होता, लेकिन फिर भी मुख में डालता है ना, छोटा सी कोई भी चीज होता है मुख में डालता है ताकि उसको लगता है कि इससे मुझे टेस्ट आएगा। तो क्योंकि अन्यों पर भी यही नियम लागू होता है, आगे फिर उसी तरह से जैसे भगवान को खाने की, यहाँ से जैसे बताया गया कि विराट पुरुष द्वारा विचलित किए जाने पर जीवनी शक्ति यानी प्राण ने भूख तथा प्यास को उत्पन्न किया, और जब विराट पुरुष ने पीने तथा खाने की इच्छा की तो मुंह खुल गया। मतलब जब उनकी इच्छा खाने पीने की हुई तो मुंह खुल गया, उसके बाद क्या हुआ, यानी मुंह उत्पन्न हो गया सारे जीवन। मुखतस्तालु निर्भिन्नम् जिह्वा तत्रोपजायते ततो नाना रसो जज्ञे जिह्व्या योधिगम्यते। मुखतस्तालु निर्भिन्नम् जिह्वा तत्रोपजायते ततो नाना रसो जज्ञे जिह्व्या योधि गम्यते। मुखतः तालु निर्भिन्नम, मुख यानी मुख से तालु यानी तालु, निर्भिन्नम अर्थात उत्पन्न हुआ। जीवा तत्र उपजायते, जीवा मतलब जीव, तत्र मतलब तत्पश्चात, उपजायते मतलब प्रकट हुए। ततः यानी उसके बाद, तत्पश्चात नाना रसो, नाना रस मतलब अनेक प्रकार के टेस्ट या स्वाद। जज्ञे, जज्ञे मतलब प्रकट हुए। जिहया यानी जीभ से योधि गम्यते, यो मना जो, अधिगम्यते मतलब आस्वादित होते। अब सबसे पहले तो उन्होंने खाने पीने की इच्छा की तो उससे केवल मुख उत्पन्न हुआ, लेकिन मुख के अंदर यदि जीभ नहीं है और टेस्ट लेने का जो अनुभव करने का है वो नहीं है और संसार में कोई स्वाद नहीं है, जो से जो हम स्वाद है तभी तो, जैसे मैंगो के अंदर टेस्ट है तभी हमारी जीव के ऊपर हम उसको खाते हैं तो उसमें टेस्ट आता ना, तो ये सब परम पुरुष की चेष्टा है। और उस तरह से क्या हुआ, अनुवाद देखिए, मुख से तालु प्रकट हुआ और फिर जब और फिर जीव भी उत्पन्न हुई, इन सब के बाद विविध स्वादों की उत्पत्ति हुई जिससे जीव उनका स्वाद ले सके। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं विकास की यह क्रमिक प्रक्रिया नियामिक देवों यानी आदि देव की व्याख्या प्रस्तुत करती है, क्योंकि आस्वाद्य रसों का नियामिक देव वरुण है। अब यहाँ तीन चीजें बताई जा रही हैं, सब आदिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तो ये जितनी भी इंद्रियां हैं, जो विकास हो रहा है, जिस तरह से किस तरह से मुख बन रहा है, टेस्ट आ रहा है, उस सब का, उन सब का नियामित देव कौन है, वरुण देवता। तो ये यहाँ आदि देव की व्याख्या हो रही है। अतः मुख यानी जीभ का आश्रय स्थल बनाता है। जब विभिन्न रसों का आस्वाद जीभ, सॉरी, जो विभिन्न रसों का आस्वादन करती है, जिनका नियामिक देव वरुण है, इससे ऐसा लगता है कि जीव के साथ ही वरुण भी उत्पन्न हुआ। अब आदि देव भी, क्योंकि जीव का स्वामी या नियामिक देव कौन है, वरुण देव है। अब अगर जीव है तो इट मीन्स उसका तो देवता है, वो भी उत्पन्न हुआ होगा। जीव तथा तालु निमित्त मात्र होने के कारण अधिभूत या पदार्थ के रूप है। अब अधिभूत मतलब पदार्थ और आदिदेव मतलब उसका भोक्ता, जबकि कार्य करने वाला देव आदिदेव कहलाता है, जो कि जीव है तथा जिस पुरुष पर कार्य किया जाता है वह आध्यात्म है। इस प्रकार विराट पुरुष के मुख खुलने के पश्चात तीनों श्रेणियों के जन्म की व्याख्या हो जाती है। प्रस्तुत श्लोक में चार सिद्धांत दिए गए हैं, जिनसे पहले बताए गए तीन प्रमुख तत्वों यानी आध्यात्मिक, आदिदेव और तथा आदिभूतम की व्याख्या हो जाती है। तो ये कैसे हो रही है, आदिदेव कौन है, जो मतलब उसका देव है, मतलब आदिभूत तो ये शरीर है समझो, जिसके जो अर्थ से मिलकर बना है, जैसे जीव, ठीक है, उसका नियामिक देवता कौन है, वरुण देव, जैसे जीव है, ठीक है, जीव का नियामिक देवता वरुण देव है। और आध्यात्म क्या है, वो जीव जो उसके उसको भोग रहा है या जो कार्य कर रहा है। तो इस तरह से इन तीनों के विषय में यहाँ पर व्याख्या की गई है। उसके बाद क्या होता है, आगे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, विवक्षोर्मुखतो भूम्नो वनिर्वाग् व्याहृतं तयो जलाय चेतस्य सुचिरं निरोधः समजायत। विवक्षोर्मुखतो भूम्नो वनिर्वाग् व्याहृतं तयो जलाय चेतस्य सुचिरं निरोधः समजायत। विवक्षोर मतलब जब बोलने की आवश्यकता हुई, मुख मनी मुख से भूमनो यानी परमेश्वर की, पहले तो टेस्ट लेने की इच्छा हुई, फिर उनकी इच्छा हुई कि अभी मुझे बात करनी है, तो वहने यानी अग्नि या अग्निदेव, वाक यानी शब्द, व्याहृतम यानी वाणी, तयो यानी दोनों के द्वारा, जले चैतस्य सुचिरम, जले मतलब जल में, च मना फिर भी, एतस्य इन सब का, सुचिरम यानी दीर्घ काल तक, निरोध समझ आयते, निरोध मतलब अवरोध समझ आयते मना बना रहता है। देखिए अनुवाद देखिए, जब परम पुरुष की बोलने की इच्छा हुई तो उनके मुख से वाणी गूंजी, वाणी वाक व्याहार्थम तयो, फिर उन्होंने बोलना मतलब शब्द उच्चारण हुए, फिर मुख से अधिष्ठाता देव अग्नि की उत्पत्ति हुई। किंतु जब वे जल में शयन कर रहे थे तो ये सारे कार्य बंद पड़े थे, मतलब जब वो शयन कर रहे थे अभी तक उनकी इच्छा उत्पन्न नहीं हुई थी, तो ना आवाज गूंज रही थी, ना कुछ हो रहा था, ना ही अग्नि देवता उत्पन्न हुए थे। लेकिन जैसे उनकी इच्छा हुई कि मुझे बात करनी है, तो फिर ये सब चीजें उत्पन्न हुई। श्री प्रभुपाद की, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, विभिन्न इंद्रियों के क्रमिक विकास की विचित्रता की पुष्टि उनके अधिष्ठाता देवों से हो जाती है। अतः यह समझ लेना चाहिए कि इंद्रियों के कार्य परमेश्वर की इच्छा द्वारा नियंत्रित होते हैं। अब जो भी हमारी इंद्रियां कार्य कर रहे हैं, जो भी हम आंखों से देख रहे हैं, मुख से बोल रहे हैं, या कर्म इंद्रियों से जो कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते विभिन्न इंद्रियों के कर्मिक विकास की विचित्रता की पुष्टि उनके अधिष्ठाता देवताओं से होती है। मतलब उस पर एक एक न एक देवता का नियंत्रण है, और ये समझ लेना चाहिए कि इंद्रियों के कार्य परमेश्वर की इच्छा के द्वारा नियंत्रित होते हैं, कि उन कार्यों पर भगवान की इच्छा का नियंत्रण होता है। ये इंद्रियां एक प्रकार से बद्ध जीव को छूट प्रदान करती हैं, जिन्हें इनका उपयोग परमेश्वर द्वारा नियुक्त अधिष्ठाता देवताओं के नियंत्रण में करना होता है। जो इन विधानों का उल्लंघन करता है उसे निम्नतर के जीवन में गिराकर दंडित किया जाता है। अब जैसे किसी गवर्नमेंट में आप रहते हो, तो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ही हमको कार्य करना होता है, लेकिन फिर भी स्वतंत्रता जो जीव को होती है कि अगर वो गवर्नमेंट के रूल्स को, जैसे गवर्नमेंट ने ये रूल किया कि भाई कोई किसी का धन नहीं लेगा, या कोई किसी को मारेगा नहीं, या किसी के साथ कोई अन्याय नहीं करेगा, लेकिन यदि फिर भी वो करता है, चोरी करता है, डकैती करता है, तो फिर क्या करेगी गवर्नमेंट, उसे छोड़ेगी क्या? नहीं। उसी तरह से देवताओं जिन जिन जो जो हमारे अंग हैं, जिन जिन शरीर के भागों से हम जो कार्य करते हैं, उनके ऊपर एक देवता है, और उस देवता के कुछ रूल्स हैं, जैसे आंखों से हमें क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, और मुख से हमें क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, जीभ से क्या खाना चाहिए, तो ये सब पहले से शास्त्रों में बताया गया। अगर हम उसका उल्लंघन करते हैं, हम उनके अंडर में हैं, लेकिन फिर भी जिन्हें इनका उपयोग परमेश्वर द्वारा नियुक्त अधिष्ठाता देवों के नियंत्रण में करना होता है, जो इन विधानों का उल्लंघन करते हैं उसे निम्नतर के जीवन में गिराकर दंडित किया जाता है, फिर उनको अपराधी मानकर निचली योनियों में भेजा जाता है। उदाहरणार्थ जीव तथा इसके अधिष्ठाता देव वरुण पर विचार करें, जीव खाने के लिए है, और मनुष्य पशु तथा पक्षी अपनी अपनी स्वतंत्रता के कारण अलग अलग स्वाद रखते हैं। एक मनुष्य तथा एक शूकर के स्वाद एक से नहीं होते, किंतु जब विशिष्ट जीव आत्मा विभिन्न गुणों के अनुसार कोई स्वाद विकसित कर लेता है, तो अधिष्ठाता देव उसे विशिष्ट प्रकार का शरीर प्रदान करता है। किंतु यदि विवेकहीन होकर मनुष्य शूकर की भांति स्वाद विकसित करता है, तो उसे अगले जन्म में शूकर का शरीर मिलता है। शूकर सभी प्रकार का भोजन स्वीकार करता है, यहाँ तक कि विष्ठा भी खाता है। अतः जो मनुष्य बिना विचार के ऐसा स्वाद विकसित करता है, उसे अगले जीवन में निम्न जीवन बिताने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा जीवन भी भगवत कृपा से ही है, क्योंकि बद्ध जीव ने जिस विशिष्ट प्रकार के भोजन का स्वाद चाहा, वैसे उसे वैसा ही शरीर मिला। यदि मनुष्य को शुक्र का शरीर मिले तो इसे भगवत कृपा ही समझना चाहिए, क्योंकि भगवान वैसी ही सुविधा प्रदान करते हैं। मृत्यु के पश्चात जो शरीर प्राप्त होता है वह अंधाधुंध नहीं वरना परम नियंता द्वारा प्रदान किया जाता है। अतः मनुष्य को सचेत रहना चाहिए कि अगले जीवन में उसे किस प्रकार का शरीर मिलने वाला है। अविवेकपूर्ण गैर जिम्मेदार जीवन घातक होता है और सभी शास्त्रों की यही घोषणा है। तो यहाँ बहुत ही सीरियस बात श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यदि आपको मनुष्य जीवन मिला है तो मनुष्य योनि सबसे उत्तम है। उसके मनुष्य जीवन को कैसे बिताना है उसके लिए शास्त्र है, उसके लिए श्रीमद् भगवत गीता है, भागवतम है। गुरु साधु और शास्त्र के आदेशों अनुसार यदि हम मनुष्य जीवन को सात्विक रहकर बिताते हैं तभी हम आगे उन्नति कर सकते हैं। यानी 84 लाख योनियों में भटकते के बाद ये मनुष्य जीवन मिला है और सिर्फ यही मनुष्य जीवन ऐसा है जिसमें हम अपने आत्मा का उद्धार कर सकते हैं, जिसमें हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन इस मनुष्य जीवन में भी आपको पूरी स्वतंत्रता है कि आप क्या करना चाहते हो। क्या इस जन्म में भी हम केवल सुअरों और कुत्तों की तरह इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं? आज हम देखते हैं ये संसार कितना काम इच्छा की ओर भटक रहा है। हर जगह पर बस ये कि इंद्रिय तृप्ति कैसे की जाए, भोग कैसे भोगा जाए, यही शिक्षा दी जाती है। मतलब अगर हम समझते हैं ना कि ये कितने एजुकेटेड हैं, कितना सोफिस्टिकेटेड लाइफ है, लेकिन वहाँ पर भी क्या सिखाया जाता है? क्या वहाँ पर ये बताया जाता है कि हमको भगवान का नाम जप करना चाहिए, हमको भगवान की भक्ति करनी चाहिए इंद्रिय तृप्ति की ओर नहीं, बल्कि भोग भोगना सिखाया जाता है कि किस तरह से अच्छे तरीके से अधिक भोग भोगा जाए, इंद्रिय तृप्ति कैसे की जाए। तो फिर भगवान श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान उस जीव के ऊपर बड़ी कृपा करते हैं और उससे वो मनुष्य का शरीर ले लेते हैं और शुक्रों जैसा शरीर दे देते, क्योंकि वो तो कुछ भी खा लेता है ना। आज का मनुष्य कभी सोचता है कि मुझे ये खाना चाहिए, ये खाना नहीं चाहिए, मुझे ये प्राप्त करना चाहिए, ये इस तरह का भोग भोगना चाहिए, इस तरह कुछ सोचता है करने से पहले कि मेरे शरीर पे एक देवता बैठा हुआ है और मैं उस अंग के द्वारा इतना अपवित्र कार्य कर रहा हूँ। अब अगर हम लोग थोड़ा सा विचार करें वो कौन सी गंदी वस्तु है जिसको आजकल लोग सेवन नहीं करते है ना। हर एक गंदी से गंदी चीज को खाने के लिए तैयार है, बस उसके अंदर टेस्ट होना चाहिए है ना। इंग्रेडिएंट्स नहीं, टेस्ट के लिए खा रहे होते तो वो तो कुछ भी खा लेता ना सुखर। तो भगवान बोलता है कि ठीक है, तुमको यदि विचार करने के लिए मनुष्य योनि को उपयोग नहीं करना है तो ठीक है, तुम बगैर विचारहीन होकर तुम्हें यदि टेस्ट को डेवलप करना है अपना तो ठीक है, तुम मैं ना सुकर बन जाओ। वो कौन सी वस्तु है? हमारे हाथ वो कौन सा गलत काम नहीं करते, हमारे हमारा शरीर कौन सा ऐसा गलत कार्य है जो नहीं करता, आंखों से कौन सी गलत वस्तु है जो हम देखते नहीं, हम सोचते नहीं भाई हमें ये नहीं देखना चाहिए। बस मतलब ऐसा लगता है जैसे किसी को पता ही नहीं है कि हम मनुष्य है और मनुष्य को ये चीजें नहीं करनी चाहिए। हर कोई अपराध करने अपनी इंद्रियों और अपराध भी चार लोगों के सामने क्या होगा, हम अपने आप को बड़ा धर्मात्मा बताएंगे कि भाई हम कितने धर्मात्मा हैं, लेकिन एकांत में अपराध का पता चलता है कि हृदय के अंदर कितना अपराध है ना। एकांत में तो अपराध होता है यही सोचकर कि कोई नहीं देख रहा, मगर ये नहीं सोचते कि हर एक इंद्रिय का एक नियामक देव है, वो नोट कर रहा है, वो लिख रहा है, हृदय के अंदर परमात्मा देख रहा है। तो ये सब हमको यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, तभी तो यहाँ पर जानवर कितने बढ़ रहे हैं। देखो अगर हम देखें तो जानवरों की संख्या कितनी बढ़ रही है, कीड़े मकोड़े कितने जन्म लेते हैं, मच्छर कितने जन्म लेते हैं, कॉकरोच कितने होते हैं, ये इसलिए क्योंकि ये मनुष्य जो है ना वो आगे बढ़ ही नहीं रहा है, मनुष्य योनि तक आ जाता है फिर वही जानवरों जैसे कार्य करके जानवर का शरीर प्राप्त होता है। अच्छा तो ये यहाँ श्री प्रभुपाद बोलते विवेक पूर्ण गैर जिम्मेदार जीवन घातक होता है और सभी शास्त्रों का यही घोषणा कि सारे शास्त्र कहते हैं कि विवेक के साथ जिम्मेदारी के साथ जीना है, मनुष्य को सचेत रहना चाहिए कि अगले जीवन में उसे किस प्रकार का शरीर मिलने वाला है, वो जैसे कार्य करेगा ना वैसे ही उसको शरीर प्राप्त होगा। आगे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं नासिके निरभिद्येताम् दोदूयति नभस्वति तत्र वायुर्गंधवहो ग्राहो नसी जगृक्षितः नासिके निरभिद्येताम् दोदूयति नभस्वति तत्र वायुर्गंधवहो ग्राणो नसी जिगृक्षितः नासिके निरभिद्येताम्। नासिके मतलब नथुना, निरभिद्येता मतलब विकसित होकर, दोधुयति तेजी से निकलती हुई, नभस्वती यानी श्वास, तत्र वायु, तत्र मतलब तत्पश्चात, वायु मतलब हवा, गंधवः सुगंधी, ग्राणम यानी ग्रहण शक्ति, नसी यानी नाक में, जिगृक्षितः सुगंध सूंघने की इच्छा करते हुए, उनको खाने की इच्छा हुई तो जीभ तालु और जो वस्तुएं हैं स्वादिष्ट वो सब पैदा हो गए, और जब उनको सूंघने की इच्छा हुई तो क्या हुआ, अनुवाद देखिए, तत्पश्चात जब परम पुरुष को सुगंध सूंघने की इच्छा हुई तो नथुने तथा श्वास ग्राणेन्द्रिय तथा सुगंधियों की उत्पत्ति हुई और सुगंधी को वहन करने वाली वायु के अधिष्ठाता देव भी प्रकट हुए। मतलब जैसे जैसे इंद्रिय प्रकट हो रही है उस इंद्रिय के ऑब्जेक्ट्स भी प्रकट हो रहे हैं, सुगंध हो रही है और उसके साथ साथ उसका एक देवता भी प्रकट हो रहा है। श्रीला प्रभुपाद की इच्छा, जब भगवान को सूंघने की इच्छा हुई तो नासिका सुगंधी अधिष्ठाता देव वायुदेव ग्रहण शक्ति इत्यादि एक साथ प्रकट हो गए। उपनिषदों में आए इस कथन की वैदिक मंत्रों द्वारा पुष्टि होती है कि जीव आत्मा द्वारा कोई कार्य करने के पूर्व ईश्वर प्रत्येक वस्तु के लिए इच्छा प्रकट करते हैं। जीव आत्मा तभी देख सकती है जब ईश्वर देख रहा हो, जीव आत्मा तभी सूंघ सकता है जब ईश्वर सूंघे इत्यादि। कहने का तात्पर्य यह है कि जीव आत्मा कोई भी कार्य स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता, भले ही वह किसी कार्य को स्वतंत्र रूप से करने के विषय में सोचे किंतु वह स्वतंत्र रूप से कोई कार्य कर नहीं सकता। भगवत कृपा से सोचने की स्वतंत्रता तो है किंतु कार्य रूप में उसकी परिणति भगवत कृपा से ही होती है, इसलिए यह आम कहावत है, आपन सोची होत नहीं प्रभु सोची तत्काल। सारी व्याख्या की का विषय है जीव आत्मा परतंत्र है और परमेश्वर पूर्ण स्वतंत्र है। जो अल्पज्ञानी पुरुष अपने को ईश्वर के समक्ष बताते हैं उन्हें पहले अपने आप को स्वतंत्र तथा परम सिद्ध प्रमाणित करना चाहिए। जब उन्हें ईश्वर से अपनी एकात्मकता का दावा परिणित करना चाहिए। यहाँ श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बता रहे हैं, मतलब एक जीव के अंदर जो भी शक्ति है वो भगवान की कृपा पर निर्भर करती है, भगवान की कृपा से ही वो खा सकता है, भगवान की कृपा से ही वो देख सकता है, भगवान की कृपा से ही वो सूंघ सकता है। अगर भगवान की शक्ति उसको नहीं प्राप्त होती तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उसको ये स्वतंत्रता है कि वो क्या खाए क्या सूंघे क्या सोचे, क्योंकि इतनी स्वतंत्रता तो भगवान ने उसे दी है। और अगर वो जो उसके लिए रिकमेंड किया गया है उसका उल्लंघन करता है तो उसके शरीर के जिस पार्ट का उसने उल्लंघन किया है उसका देवता भी उसके साथ है, तो उस देवता की कृपा भी उसको प्राप्त नहीं होती है। और फिर नेक्स्ट बर्थ में उसको ऐसा जीवन मिलता है जिससे वो और भी निकृष्ट चला जाता है, क्योंकि मनुष्य योनि में तो उसने उस शरीर के अंग का सदुपयोग नहीं किया, तो इसके कारण भगवान और उस देवता की कृपा से वो वंचित हो जाता है। इसीलिए जो जो शास्त्रों में और वेदों में सुगुरु साधु के वाक्यों पर यकीन नहीं करते और अपनी मनमानी से कार्य करते हैं उनको अवश्य दंडित होना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हम जो भी कार्य करते हैं आपन सोची होत नहीं प्रभु सोची तत्काल। भगवान, हम लोग अक्सर ये सोचते ऐसा होना चाहिए, हम लोग कार्य करते हैं लेकिन वो ऐसा होता नहीं है, जैसा भगवान की इच्छा होती है वैसा ही होता है, क्योंकि हमारे कार्य जो है वो स्वतंत्र नहीं है, हमारे पिछले कर्मों के अनुसार कुछ रिजल्ट है, उसी के अनुसार हमको आज जो मिलने वाला है वो मिलेगा। तो सारी व्याख्या का विषय है कि जीव आत्मा परतंत्र है और परमेश्वर पूर्ण स्वतंत्र है। भगवान जो है वही स्वतंत्र है, हम तो डिपेंडेंट हैं। और यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो आजकल जो अल्पज्ञानी लोग हैं अपने आप को स्वतंत्र कहते हैं, परमात्मा के समान कहते हैं, उनको पहले क्या करना चाहिए, पहले अपने आप को स्वतंत्र तथा परम सिद्ध प्रमाणित करना चाहिए, तब उन्हें परमेश्वर से अपनी एकात्मकता का दावा प्रमाणित करना चाहिए, फिर जाकर उनको ये कहना चाहिए कि हाँ पहले सिद्ध तो करो कि स्वतंत्र हो, है ना। वो आज कोई अगर बड़े से बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति हो, वो बोलता मैं बहुत बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति हूँ, और फिर कल उसको पैरालाइज हो जाए तो फिर वो उसकी शक्ति किसी काम की आने वाली नहीं है। कोई आज बहुत सुंदर दिखता हो लेकिन कल कुरूप हो जाए, उसके जो इंद्रियां हैं वो काम करना छोड़ दे, तो फिर कोई स्वतंत्र नहीं है। हर किसी को बूढ़ा होना है, हर किसी को यहाँ पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो लगा रहता है, तो कोई स्वतंत्र नहीं है। हम सब परतंत्र हैं, भगवान के आश्रित है, ना चाहते हुए भी जीव भगवान के आश्रित है, है ना। कोई अगर सोचता है कि भाई मैं भगवान के आज्ञा का पालन नहीं करूंगा तो भी उसे बूढ़ा होना पड़ता है, तो भी उसको बीमार होना पड़ता है, प्रकृति के नियम तो उस पर भी लागू होते हैं।
यदात्मनि निरालोकम् आत्मानं च दिदीक्षितः निर्भिन्नेह क्षिणीतस्य ज्योतिश्चक्षुर्गुणगृह। यदात्मनि निरालोकम् आत्मानं च दिदीक्षितः निर्भिन्नेह क्षिणीतस्य ज्योतिश्चक्षुर्गुणग्रह। यदात्मनि निरालोकम्, यदा मन जब आत्मनि यानी अपने को, निरालोकम मतलब बिना प्रकाश के, आत्मनम आत्मनम मतलब अपना दिव्य शरीर, च दिदीक्षता च मन अन्य शरीर रूप की भी, दिदीक्षता देखने की इच्छा, निर्भिन्ने प्रकट होने से ही, क्योंकि अक्षिणी आंखों के, तस्य ज्योति, तस्य मना उसका, ज्योति मना सूर्य, चक्षु गुण ग्रह, चक्षु मना आंखें, गुण ग्रह मतलब देखने की शक्ति। अनुवाद, इस प्रकार जब सारी वस्तुएं अंधकार में विद्यमान थी तो भगवान की अपने आप को तथा जो कुछ उन्होंने रचा था उन सबको देखने की इच्छा हुई। आत्मानं च दिदीक्षता, स्वयं को और संपूर्ण सृष्टि को देखने की इच्छा हुई, तो उन सबको देखने की इच्छा हुई तब आंखें, प्रकाशमान सूर्यदेव, देखने की शक्ति तथा देखने वाली वस्तु, ये सभी प्रकट हुए, यानी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट और उसका जो देवता वो सब चीजें उत्पन्न हुई। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यह ब्रह्मांड यथार्थ में घना अंधकार है और इसलिए समग्र सृष्टि तमस या अंधकार कहलाती है। रात्रि ही ब्रह्मांड का वास्तविक स्वरूप है, क्योंकि तब मनुष्य को कुछ भी नहीं दिखता, यहाँ तक कि वह स्वयं को भी नहीं देख सकता। भगवान ने अपनी अहितु की कृपा से सर्वप्रथम अपने आप को तथा अपनी सारी सृष्टि को देखना चाहा। इस तरह सूर्य प्रकट हुआ, समस्त जीवों में देखने की शक्ति उत्पन्न हुई और दिखने वाली वस्तुएं भी प्रकट हुई। इसका अर्थ यह हुआ कि सूर्य की सृष्टि के बाद ही सारा व्यवहार जगत दिखाई पड़ता है, पड़ने लगा। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी हमें समझा रहे कि संसार का वास्तविकता क्या है, अंधकार है, तमस है। ये जो ब्रह्मांड भगवान के रूम के ऊपर से उत्पन्न हुए ना, वो सब एकदम डार्क और ब्लैंक थे, उसके अंदर कुछ भी नहीं था। लेकिन भगवान ने क्योंकि स्वयं इच्छा की कि मुझे कुछ टेस्ट करना है तो टेस्ट की चीजें उत्पन्न हुई, मुझे कुछ सुगंध लेनी है तो सुगंध की चीजें और उसके देवता उत्पन्न हुए, मुझे कुछ ना देखना है जो मैं स्वयं को देखना है और मैंने जो सृष्टि की रचना, तो उसके लिए भगवान ने प्रकाश उत्पन्न किया। सूर्य प्रकाश से ही, पहले तो अंधकार था, सूर्य प्रकाश ने इस संसार को इस योग्य बनाया कि कुछ दिखे। उसके बाद ये इलेक्ट्रिसिटी, ये मोमबत्ती, ये कैंडल, ये दिया, लैंप जो भी है, वो तो बाद की बात है, लेकिन स्टार्ट में अंधेरा ही अंधेरा था। और ये संसार श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं तमस है, तो भगवान की अहितु की कृपा है कि भगवान ने इस संसार में कुछ प्रकाश उत्पन्न किया। उसी तरह से हमारा जीवन भी अंधकार में ही है, और केवल इसलिए हम बोलते हैं अज्ञान तिमरंदस्य ज्ञान अंजना शलाखा। हम अंधकार में डूबे हैं और ज्ञान का प्रकाश लेकर आते हैं कौन, गुरु महाराज, कि वो हमें बताते हैं कि वास्तविकता क्या है, हम अपने आप को समझते क्या है और रियल में हम क्या हैं। तो ये जिस तरह से सूर्य संसार को प्रकाशित करता है, इस तरह गुरु जो है वो ज्ञान के रोशनी से, ज्ञान के प्रकाश से हमारे जीवन को प्रकाशित करता है और हमें ये पता चलता है कि हमारा वास्तविक उद्देश्य क्या है, हमने जीवन क्यों धारण किया है। तो इससे यदि ये सब भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। बोध्यमान्यस्य ऋषिभिः आत्मानस्तज्जिगृक्षितः करणोच निरभिद्येताम् दिशः श्रोत्रं गुणगृहः। बोध्यमानस्य ऋषिभिः आत्मनस्तज्जिगृक्षितः करणोच निरभिद्येताम् दिशः श्रोत्रं गुणग्रहः। बोध्यमानस्य ऋषिभिः, बोध्यमानस मतलब जानने की इच्छा से, ऋषिभिः यानी ऋषियों के द्वारा। अब ऋषियों के द्वारा भगवान को जानने की इच्छा हुई। आत्मनः यानी परमेश्वर का तत्व जिगृक्षतः ग्रहण करने की इच्छा होने पर, कारणों यानी दो कान, च निरभिद्येताम यानी प्रकट हुए, दिशा यानी दिशा अथवा वायु देवता, श्रोत्रम यानी सुनने की शक्ति, गुणगृह तथा सुनने की वस्तुएं। अब उनकी इच्छा हुई कि मुझे ऋषियों के द्वारा सुनना है, तो कान, सुनने की शक्ति और सुनने का देवता, ये सब प्रकट हुए। अनुवाद, महान ऋषियों द्वारा जानने की इच्छा विकसित होने से कान, सुनने की शक्ति, सुनने के अधिष्ठाता देव तथा सुनने की वस्तुएं प्रकट हुई। ऋषिगण आत्मा के विषय में सुनना चाह रहे थे। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है कि ज्ञान के द्वारा प्रत्येक वस्तु के आश्रय रूप परमेश्वर के विषय में जानने का प्रयत्न करना चाहिए। ज्ञान का अर्थ केवल उन प्राकृतिक नियमों का ज्ञान नहीं है जो भगवान के निर्देश से कार्य कर रहे हैं। विज्ञानी प्रकृति में कार्यशील भौतिक नियमों के विषय में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। वे अपने से दूर अन्य ग्रहों में घटित होने वाली घटनाओं के विषय में रेडियो तथा टेलीविजन द्वारा सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु उन्हें यह समझना चाहिए कि भगवान ने सुनने की शक्ति अथवा सुनने के उपकरण उन्हें अपने विषय में या भगवान के विषय में सुनने के लिए ही प्रदान किए हैं। शिला प्रभुपाद बहुत ही सुंदर बात करता कि आज हमको कान मिले ना तो हम संसार में क्या हो रहा है, प्रकृति में क्या हो रहा है, अन्य ग्रहों में क्या हो रहा है, ये सब जानने की बहुत इच्छा करते हैं, है ना। कौन कहाँ पर मैच खेला जा रहा है और उस मैच का क्या रिजल्ट आया वो देखने के लिए सब, वो हीरो हीरोइंस जो है ना बॉलीवुड के बारे में और वो सब बातें जानने के लिए कितनी इच्छा होती है। लेकिन श्रोत्र क्यों बनाए गए हैं, कान क्यों बनाए हुए, कान की क्या उपयोगिता है, वो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं। किंतु उन्हें यह समझना चाहिए कि भगवान ने सुनने की शक्ति अथवा सुनने का उपकरण उन्हें अपने विषय में या भगवान के विषय में सुनने के लिए प्रदान। अपने विषय में मतलब जीव को ये पता चले कि मैं कौन हूँ, मुझे किस लिए पैदा किया गया है, मुझे क्यों इस संसार में भेजा गया है, मैं क्या कारण है कि मुझे भगवान ने अपने धाम में नहीं रहने दिया और इस संसार में झुलसने के लिए भेज दिया। अपने विषय में जानो क्योंकि मैं भगवान का दास हूँ और मैंने भगवान की आज्ञा का उल्लंघन किया, भगवान के दासत्व को स्वीकार ना करके प्रभुत्व जताने की इच्छा की, इसलिए मैं संसार में आया हूँ। और भगवान के विषय में जानना कि भगवान कितने करुणामयी हैं, इतने अपराध करते हैं हम उसके बावजूद भी भगवान हमें बार बार अवसर प्रदान करते हैं अपने धाम आने का। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं दुर्भाग्यवश सुनने की शक्ति का गलत प्रयोग सांसारिक विषयों संबंधी शब्दों के सुनने में किया जाता है। महान ऋषिगण वैदिक ज्ञान के द्वारा केवल ईश्वर के विषय में सुनने की इच्छा रखते थे, श्रवण द्वारा ज्ञान ग्रहण करने की शुरुआत यही है। तो जो शुद्ध व्यक्ति होते हैं, ऋषिगण होते हैं, वो तो केवल भगवान के विषय में श्रवण करना चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज सुनने की शक्ति का गलत प्रयोग क्यों किया जा रहा है, सांसारिक विषयों संबंधी सुनना, बस संसार के बारे में ही सब सुनना चाहते हैं। कहीं पर भगवान की कथा होगी ना तो क्या बोलेंगे कि भाई कथा का टाइम है ना 45 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, आधा घंटा कथा हो बस, उसके बाद ऐसा लगता है जैसे सबके पाँव में चक्री आने लग रही होती है, सर जो है ना दुखने लगता है कि भगवान के विषय में इतनी देर नहीं सुना जा सकता। बाकी कान तो कंटिन्यूस खुले हुए होते हैं, है ना, अगर ध्यान दिया जाए तो 24 घंटे कान सुन रहे होते हैं, तब उनको ये नहीं लगता कि इतने घंटे तक सुन ही रहे, और वो सब सुन क्या रहे होते हैं, संसारी वार्ता ही सुन रहे होते ना, संसार के विषय में सुनते सुनते जीव उबता नहीं है, कंटिन्यू सुन सकता है और सुनने की इच्छा और प्रबल होती है। अच्छा उसका क्या हुआ, उसके यहाँ पर क्या हुआ, उसकी एंगेजमेंट हो गई, उसके बच्चे हो गए, उसकी शादी हो गई, उसका ये हो गया, अच्छा वो कैसे मरा, उसका क्या हुआ, उसका वो लगता है मतलब कितना संसार के बारे में जिज्ञासा करते हैं और कितना उनके बारे में सुनते हैं, थकते नहीं है। लेकिन भगवत कथा अगर लेक्चर आता है और वो लिखा होता है 1 घंटा 20 मिनट का लेक्चर, उनको ऐसा लगता है जैसे वज्रपात हो गया, कि हमें हम लोग ऐसे बोलते हैं भाई भगवत गीता जो है वो सुनो, भगवत गीता के श्लोक का सुनो तो आधे घंटे का लेक्चर होगा या ज्यादा से ज्यादा 35 मिनट का लेक्चर होगा डेली सुन, भाई इतना नहीं सुन सकते, 5 से 8 मिनट का कोई अगर लेक्चर बनाते हो तो वो बनाओ, इतना बड़ा बड़ा लेक्चर हम नहीं सुन सकते। मतलब भगवान के विषय में ये कान बने इसलिए कि भगवान के विषय में सुनो, और 1 घंटा सुनना भी हमको मुश्किल लगता है और दुनिया के लिए सुनने के लिए 24 घंटे भी हमको कम लगते हैं। इसके बाद सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं वस्तुनो मृदु काठिन्य लघु गुरु शीतताम जिग्रक्षत निर्भिन्ना तस्याम रोमा महिरुहा तत्र चांतर बहिर्वातस चालब्ध गुणोवृतः वस्तुनो मृदु काठिन्य लघु गुर्वोष्ण शीतताम जिग्रक्षतस त्वं निर्भिन्ना तस्याम रोमा महिरुहा त्रत्र चांतर बहिर्वातस त्वचा लब्ध गुणोवृतः वस्तुनो मृदु काठिन्य वस्तु नो मतलब समस्त पदार्थ जितने वस्तु है, मृदु मना सॉफ्ट कोमल, काठिन्य मतलब कठोर यानी सॉफ्ट और जो हार्ड होते हैं वो, लघु मना हल्का या छोटा, गौरव मतलब भारीपन जो बड़ा है बड़ा भारी है, ऊष्णी औष्ण मना उष्णता यानी गर्मी, शीत यानी सर्दी शीतलता, जिग्रक्षता देखने की इच्छा से, त्वक यानी स्पर्श, निर्भिन्न यानी वितरित तस्याम त्वचा में, रोम मही रोहा, रोम मतलब जो हमारी शरीर के ऊपर रोम होते हैं ना छोटे छोटे बाल होते हैं, मही रोहा मतलब उनके जो अधिष्ठाता देव देव हैं, मतलब वृक्ष अधिष्ठाता देव, तत्र च अंतर बहिर, तत्र मन वहां च मन भी, अंतर मन भीतर और बही मतलब बाहर, वात त्वचा, वात मन स्पर्श इंद्रिय या चमरी जो है वो, लब्ध गुण वृत, लब्ध मन देख कर, गुण यानी स्पर्श इंद्रिय का विषय, वृत मन उत्पन्न। अनुवाद देखिए, जब पदार्थ के भौतिक गुणों यथा कोमलता कठोरता उष्णता शीतलता हल्कापन तथा भारीपन को देखने की इच्छा हुई तो अनुभूति की पृष्ठभूमि त्वचा, त्वचा के छिद्र, रोम तथा उनके अधिष्ठाता देव यानी वृक्षों की उत्पत्ति हुई। अब यहाँ पर जो संसार में जो कुछ पदार्थ है उनका एक अपना गुण होता है, कुछ सॉफ्ट होते हैं कुछ हार्ड होते हैं, कभी सर्दी होती है कभी गर्मी होती है, कुछ वस्तुएं जो हैं वो गर्म होती हैं कुछ ठंडी होती हैं कुछ हल्की होती हैं कुछ भारी होती हैं। तो जब भगवान को इन सब के विषय में जानने की इच्छा हुई तो क्या उत्पन्न हुआ, तो त्वचा, त्वचा माना हमारी स्किन और त्वचा के अंदर जो रोम है, रोम और उनके छिद्र जो छोटे छोटे सुराख होते हैं वो, तथा अधिष्ठाता देवता फिर उनको कंट्रोल करने वाले देव के ऊपर, ये सब हमें क्या बता रहे हैं, आदिदैविक आदिभौतिक और आध्यात्मिक, ये चार तीन चीजों का ही विवरण किया जा रहा है। तो हर एक वस्तु के साथ ये आदिदैविक आदिभौतिक और आध्यात्मिक बन रहा है। तो त्वचा के भीतर तथा बाहर वायु की खोल है जिससे जिसके माध्यम से स्पर्श का अनुभव होने लगता है। हमको पता चलता है ना कि कुछ स्पर्श हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि भीतर और बाहर जो है एक खोल बना हुआ है वायु का जो हमें स्पर्श का अनुभव कराता है। इसको शिला प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति समझाएंगे, तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं पदार्थ की कोमलता जैसे भौतिक गुण इंद्रिय अनुभूति के विषय है, अतः भौतिक ज्ञान स्पर्श का विषय है। पदार्थ का ताप हाथ से स्पर्श करके जाना जा सकता है, किसी वस्तु का भार उसको हाथ में उठाकर ज्ञात किया जा सकता है जिससे उसके भारीपन या हल्केपन का अनुभव लगता है। शरीर की त्वचा यानी छिद्र रोम कूप तथा रोम ये सब स्पर्श के अन्योनाश्रित है। त्वचा के बाहर तथा भीतर बहने वाली वायु भी स्पर्श इंद्रिय का एक माध्यम है। यह स्पर्श इंद्रिय ज्ञान का स्रोत भी है, मतलब इससे हमको स्पर्श से हमको पता चलता है ना कि ठंडा है या गर्म है या कैसा है, तो ज्ञान का स्रोत भी है। इसीलिए यह सुझाया जाता है कि जैसा ऊपर वर्णित है भौतिक या शारीरिक ज्ञान आत्मज्ञान के अधीन है। आत्मज्ञान बढ़कर व्यावहारिक ज्ञान हो सकता है किंतु भौतिक ज्ञान कभी भी आत्मज्ञान नहीं बन सकता। यानी जिसको आत्मिक ज्ञान है तो वो तो व्यावहारिक भी बता सकता है कि भाई क्योंकि भगवान की कृपा है सब वस्तुओं के ऊपर, भगवान की अनुकंपा है जिसके कारण हम देख रहे हैं सुन रहे हैं, तो वो भौतिक बातें भी उसमें आ जाती है। लेकिन जिनको केवल भौतिक ज्ञान ही है वो आध्यात्मिक ज्ञान तक बहुत मुश्किल से पहुंच सकते हैं। उनको तो आध्यात्मिक शास्त्रों गुरु साधु और शास्त्र के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। जिसको पहले भगवान के ऊपर विश्वास है वो तो भौतिक चीजों को देखकर भी भगवान के विषय में सोच सकता है कि ये भगवान की कृपा से हो रहा है। यहाँ श्री प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं कि किंतु शरीर के रोमों तथा पृथ्वी के शरीर पर उगी वनस्पति में निकट का संबंध है। अब उनमें क्या संबंध है, शरीर के जो रोम होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, और पृथ्वी पर जो वनस्पतियां, जो स्पेशली जो उसको बोलते ना जड़ी बूटियां वगैरह होती हैं, वो जैसा कि यहाँ श्री प्रभुपाद बोले, जैसा कि तृतीय स्कंद में कहा गया है कि वनस्पतियां त्वचा के लिए पोषक हैं, भोजन के रूप में तथा औषधि के रूप में भी त्वचमस्य विनिर्भिन्ना विविशुर दृढ़यम औषधि। यानी कि ये जो वस्तुएं हैं, जड़ी बूटियां या ये वनस्पतियां हैं, वो ही संसार में इसलिए हैं क्योंकि वो हमारी औषधि के काम आती हैं, हमारे शरीर की औषधि का, यदि कोई बीमारी हो जाती है तो उसके लिए उपयोगी होते हैं। अभी तो अंग्रेजी दवाइयां आ गई है ना, पहले जमाने में क्या होता था, कोई भी यदि किसी को रोग होता था तो इन्हीं वनस्पतियों से ही उनका इलाज किया जाता था, सारा ट्रीटमेंट। आज भी हम भी देखते हैं जो होम रेमेडीज होती है वो सब इन्हीं वस्तुओं से मिलकर ही उनके लिए उपचार बताया जाता है। तो इनका हमारे शरीर के साथ बहुत संबंध है कि उनको बनाए इसलिए गया है, और जो दूसरी मेडिसिन भी बनती है वो भी इन्हीं से बनती है ताकि हमारे शरीर को रोग मुक्त किया जा सके और इसको इस योग्य बनाया जा सके शरीर को, ताकि वो जिस कार्य के लिए इस शरीर में जीव आत्मा आई हो उस कार्य को संपन्न कर सके, अर्थात सही से भगवान की भक्ति कर सके। इसके बाद श्लोक नंबर 24 में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हस्तरुरु हतुस्तस्य नाना कर्म चिकीर्षया तयोस्तु बलवानिद्र आदानम उभयाश्रयम्। हस्तरुरु हतुस्तस्य नाना कर्म चिकीर्षया तयोस्तु बलवानिद्र आदानम उभयाश्रयम्। हस्तो रुरु हतु, हस्तो मतलब दो हाथ, रुरु हतु मतलब प्रकट हुए, तस्य उसके, नाना कर्म चिकीर्षया, क्यों, नाना मतलब बहुत सारे विविध, कर्म मतलब कर्म, चिकीर्षया मतलब इच्छा। जब भगवान ने इच्छा की कि मुझे विभिन्न कार्य करने हैं तो हस्त उत्पन्न हुए, यानी हाथ उत्पन्न हुए। तयोस्तु बलवान, तयो मन उनका, तू मन लेकिन, बलवान मतलब शक्ति देने के लिए, इंद्र स्वर्ग का देवता, आदानम यानी हाथ के कार्य, उभय आश्रयम यानी देवता तथा हाथ दोनों पर आश्रित। अनुवाद देखिए, तत्पश्चात जब परम पुरुष को नाना प्रकार के कार्य करने की इच्छा हुई तो दो हाथ तथा उनकी नियामिक शक्ति एवं स्वर्ग के देवता इंद्र के साथ ही दोनों हाथों तथा देवता पर आश्रित कार्य भी प्रकट हुए। फिर कर्मेंद्रियां के उत्पन्न के विषय में बता रहे हैं श्री प्रभुपाद की इच्छा, कि हम यह देख सकते हैं कि जीवात्मा की इंद्रियां किसी भी अवस्था में स्वतंत्र नहीं रहती है, वो स्वतंत्र नहीं रहती है। भगवान को इंद्रियों का स्वामी ऋषिकेश कहा जाता है। इस प्रकार जीवात्माओं की इंद्रियां भगवान की इच्छा से प्रकट होती है और प्रत्येक अंग किसी न किसी विशेष देवता द्वारा नियंत्रित होता है। श्री प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि हमारे शरीर का हर एक अंग जो है उसके उसका एक नियामक देवता है, वो उसी देवता के द्वारा जो आदेश होता है उसी के अनुसार वो कार्य करता है। हमको लग रहा होता है कि हम हाथ ऊपर कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, हम आंख खोल रहे होते हैं, ये आंख जो झपकती है ना बार बार, निमिष बोलते हैं उसको, तो जो एक देवता है निमि नाम के, वो उसका काम क्या है कि वो आंख को झपकाता है। यदि वो अपना कर्तव्य पूरा नहीं करे तो फिर हम आंख को झपकाना ही भूल जाए। हम रात को सोते हैं आंखें बंद होती हैं, हम सुबह को उठते हैं आंखें खोलते हैं, कभी हमारा जो दिल धड़कता है ना उसके लिए भी भगवान ने एक नियामक देवता रखा है। जो सांस ले रहे होते हैं वो सांसों का भी एक देवता होता है। तो हम स्वतंत्र नहीं है। भगवान को इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश कहा जाता है। सारी जितनी भी इंद्रियां हैं उनका एक अलग अलग देवता है और उन सारे देवी देवताओं के जो स्वामी है वो भगवान है। इस प्रकार जीव आत्माओं की इंद्रियां भगवान की इच्छा से प्रकट होती है और प्रत्येक अंग किसी न किसी विशेष देवता द्वारा नियंत्रित होता। अतः कोई भी अपने को इंद्रियों का स्वामी नहीं कह सकता। ऋषिकेश केवल भगवान श्री कृष्ण है। जीवात्मा इंद्रियों द्वारा नियंत्रित है ना? जीवात्मा इसके अंदर कैद है। इंद्रियां देवताओं द्वारा नियंत्रित है। इंद्रियों को कौन नियंत्रित कर रहा है? देवता नियंत्रित कर रहे हैं। और देवता परमेश्वर के दास होते हैं, यानी देवता जो है वो भगवान के द्वारा नियंत्रित है। सृष्टि की यही व्यवस्था है। अंततः सब कुछ परमेश्वर द्वारा नियंत्रित होता है और प्रकृति अथवा जीव आत्मा को किसी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। जो मोहग्रस्त जीव आत्मा अपने को अपनी इंद्रियों का स्वामी होने का दावा करता है वह भगवान की बहिरंगाई शक्ति के चुंगल में रहता है। जब तक जीव आत्मा को अपने क्षुद्र अस्तित्व के घमंड में रहता है तब तक उसे भगवान की बहिरंगाई शक्ति के कठोर नियंत्रण में समझना चाहिए और माया के चुंगल से मुक्ति पाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, चाहे वह अपने को कितना ही मुक्त जीव क्यों न घोषित करता रहे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर ये बात समझने की है कि केवल मोह है जो हम अपने आप को इंद्रियों का स्वामी मान रहे हैं, जो हम अपने आप को भोक्ता मान रहे हैं। ये तो बल्कि क्या है, बहिरंगा शक्ति माया का चुंगल है जिसमें हम फंसे हुए हैं। हमारी जब तक जीव आत्मा को अपने शुद्र अस्तित्व का घमंड रहता कि मैं कुछ हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, ये तो अहंकार है, कुछ नहीं कर सकता जीव। जीव तो एक सांस से दूसरी सांस तक नहीं ले सकता जब तक कि उसको भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो ना? कभी हम देखते हैं एक सांस लेने के लिए जीव तड़प रहा होता है और तड़पते तड़पते प्राण निकल जाते हैं। ऐसा क्षुद्र जीव है, उसकी कोई क्षमता नहीं है, वो बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है, अपने कर्मों में बंधा हुआ है। वो कितना भी मेहनत करे, कितना भी कार्य करे, उसको फल उतना ही मिलेगा जितना उसके भाग्य में। इसलिए शास्त्र कहता है ना रक्ति घटे ना तिल भरे जो लिख दिया कर कार। करते रहो, तुम कितनी भी मेहनत करते हो, कितना यहाँ बोला, चाहे वो अपने आप को कितना ही मुक्त जीव क्यों ना घोषित करे, चाहे वो कितना ही सोचे कि मैं स्वतंत्र हूँ और मैं अपनी स्वतंत्रता से संसार में कुछ करके दिखाऊंगा, तो भी वो माया के चुंगल से मुक्ति पाने का कोई उसका प्रश्न ही नहीं उठता। वो तो माया के चुंगल से मुक्ति पाने का और अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने का केवल एक ही तरीका है कि हमें भगवान को सरेंडर करना है, भगवान की शरण में जाना है, भगवान की शरणागति प्राप्त करके, मतलब जैसा भगवान ने कहा है वैसा यदि हम जीते हैं, जो भगवान ने आदेश दिया है उस तरह से यदि हम लोग जीते हैं, वही खाते हैं जो भगवान चाहते हैं, वही देखते हैं जो भगवान देख खाना चाहते हैं, वही सुनते हैं जो भगवान चाहते हैं, वही बोलते हैं जो भगवान जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान ऋषिकेश है, सारी इंद्रियों के जो स्वामी हैं, उनको यदि प्रसन्न किया जाए तभी जीव आत्मा आनंदित हो सकती है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। लेकिन दुर्भाग्य है संसार में सब अपने आप को प्रसन्न करना चाहते, अपनी इंद्रियों को प्रसन्न करना चाहते, इसीलिए दुखी होते, इसीलिए बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंसते हैं। तो हम सबका कर्तव्य है कि हम भगवान को सरेंडर करें, भगवान की भक्ति करें, भगवान के पवित्र नाम का जप करें, ताकि हम जीवन के वास्तविक लक्ष्य की ओर जा सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा, ताकि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं।